कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय सुधनंदन जय ब्रज जन रंजन सुधा यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदान जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी जय हो राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री लोकनाथ गोस्वामी तिरुभावतिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज विशेष दिन क्या है, कौन बताएगा? क्या दिन है आज? कुछ विशेष दिन है? श्री लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। बहुत ही पवित्र दिन है। और चूंकि उनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव दिवस नहीं आता है, इसलिए साल में केवल एक ही दिन हमें उनको याद करने का अवसर मिलता है। इसलिए हमें उनका जो है अच्छी प्रकार से स्मरण करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन उनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है। हरि बोल। तो आज नोएडा मंदिर में हमने उनके बारे में पूरा प्रवचन दिया था, तो उसमें कुछ बातें जो रह गई थी उनको मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के संगी थे, और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सबसे पहले वे वृंदावन में आए। छह गोस्वामी तो बाद में आए, लोकनाथ गोस्वामी, उनके साथ में भूगर्भ गोस्वामी, ये दो गोस्वामी पहले वृंदावन में आए। उस समय वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था, मुसलमानों के आक्रमण से सब मंदिर टूट फूट गए थे, और अर्चा विग्रहों को इधर उधर छिपा दिया गया था, और वो पुजारी भी उन पुजारियों का भी पता नहीं चला, तो अर्चा विग्रहों का भी अब कोई पता नहीं था कि कहाँ छिपे हैं। लेकिन अर्चा विग्रहों ने स्वयं विभिन्न भक्तों को अपनी सूचनाएं दी कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। लोकनाथ गोस्वामी को भी राधा विनोद ने जो है स्वप्न दिया कि मैं किशोरी कुंड में अंदर पड़ा हूँ, और कई सौ सालों से भूखा हूँ, मुझे निकालो और मुझे भोग लगाओ। तो लोकनाथ गोस्वामी ने किशोरी कुंड के अंदर से उनको निकाला, और उनको जो है उनके पास तो कुछ था नहीं, भोग कैसे भोग लगाते क्या, तो जो जंगल में जो कुछ भी सामग्री मिली उसी को ही बना करके पका करके राधा विनोद को भोग लगाया, और फूलों की सैया बिछाई, उसमें उनको शयन कराया, और पत्तों का जो है पंखा बनाया, पत्तों का पंखा बनाया, पंखा झला। उनका कोई घर नहीं, उनकी कुटिया नहीं थी, तो पूरे ब्रज में घूमते रहते थे, एक झोले में उनको रख करके और झोला अपने गले में लटका करके घूमते रहते थे, और जब वर्षा होए तो उनके पास कोई छाता भी नहीं था। जब वर्षा होए तो राधा विनोद को बचाने के लिए वे अपनी छाती से लगा करके और झोंके झोंके चलते थे, ताकि राधा विनोद को जो है वर्षा का जो है कष्ट ना हो। वर्षा से रक्षा करने के लिए कभी पेड़ की किसी खोड़र में उनको रखते थे, और नहीं तो अपनी गोद में छिपा लेते थे, तो खुद भीगते रहते थे, लेकिन उनको जो है भीगने नहीं देते थे। तो इस तरह की वो सेवा करने लगे, और कुछ समय के बाद फिर उन्होंने अपनी कुछ कुटिया वगैरह बनाई, तो राधा विनोद के रसोई भोग के लिए आपने एक शिष्य को नियुक्त कर रखा था। शिष्य तो उन्होंने केवल एक ही बनाया था अपने जीवन काल में, नरोत्तम दास ठाकुर को, और किसी को शिष्य नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ शिष्य बताया गया है, तो शिष्य का मतलब कोई सहायक, किसी सहायक को उन्होंने नियुक्त किया था रसोई भोग के लिए। रसोई भोग मतलब कि रोज राधा विनोद के लिए भोग बनाना है, किसी को नियुक्त किया था। तो वो रसोईया भोग के लिए बहुत सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था राधा विनोद के लिए। तो एक बार वो रसोईया बीमार पड़ गया, और दूसरा कोई रसोई में इतना निपुण था नहीं, तो लोकनाथ जी स्वयं उन दिनों बनाते थे, राधा विनोद के लिए बनाते थे। एक दिन ये श्री राधा विनोद का श्रृंगार करके उनकी छवि निहारती रह गए, भूल गए, श्रृंगार किया, अब भोग बनाना है तो भोग बनाना भूल गए, श्रृंगार किया तो इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लग रहे कि देखते रहे देखते रहे देखते रहे। अब भोग कौन बनाएगा, वो भूल गए कि भोग बनाना है। श्रृंगार इतना सुंदर राधा विनोद का, तो देखते रहे देखते रहे, ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें रसोई तैयार करना है। रसोई घर घर में सब सामग्री लेकर कुछ शिष्य इनका इंतजार कर रहे थे कि आएंगे गोस्वामी जी भोग बनाएंगे। लेकिन ये तो राधा विनोद की छवि में गुम हो रहे थे। राधा विनोद जी स्वयं लोकनाथ जी का वेश धारण करके रसोई घर में गए। अब भगवान ने देखा कि ये तो जो है मेरे सुंदरता में जो है डूबे हुए हैं, अब मुझे करना पड़ेगा काम। तो राधा विनोद जी स्वयं इनका वेश बना करके रसोई घर में आए और तैयार करने लगे, रसोई तैयार करने। इतने एक शिष्य किसी विशेष कार्यवश मंदिर में गया, उसने देखा कि गुरुदेव तो राधा विनोद के सौंदर्य को देख रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। इधर गुरुदेव जो है रसोई बना रहे राधा विनोद की, और इधर गुरुदेव बैठे राधा विनोद का दर्शन कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। शिष्य के आश्चर्य की सीमा न रही, कई बार रसोई घर में जाता था फिर मंदिर में आता था, इधर मंदिर में गुरुदेव देख रहे हैं राधा विनोद को है, और रसोई घर में जाए तो गुरुदेव तैयार कर रहे हैं, रसोई तैयार कर रहे हैं है? तो कई बार वो इधर भी गया इधर भी गया। कौन असली है कौन नकली है उसे समझ में नहीं आया। दोनों असली हैं, गुरुदेव हैं दोनों। तो दोनों जगह देखकर गुरुदेव को देखकर मुग्ध रह गया। अंत में गोस्वामी जी को ध्यान से जगाया, उसने जगाया कि महाराज रसोई आप रसोई तैयार नहीं कर रहे हैं, आप तो दर्शन कर रहे हैं। तो भागे भागे रसोई घर में गए तो वहां सब रसोई तैयार, किंतु रसोईया फरार हो गया, रसोईया भाग गया, फरार हो गया है, भय से पकड़े जाएंगे। गोस्वामी जी और सब शिष्य रोमांचित हो गए। आप जब मंदिर में आए तो राधा विनोद जी के मुख पर अनोखी मुस्कुराहट देखी है, मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट से संकेत कर रहे थे कि और कोई नहीं, मैं ही कर रहा था ये सब काम, तुम्हारा वेश धारण करके मैं कर रहा था, मुस्कुरा रहे हैं राधा विनोद जी। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों साथ रहते थे। आज संसार में श्री चैतन्य धर्म का जो प्रचार और प्रसार है उसमें सबसे पहले अनुयायी लोकनाथ गोस्वामी का बड़ा हाथ है। नरोत्तम दास को इन्होंने जब दीक्षा दी तो इनका कार्य अब इस जीवन का समाप्त हो चुका है। जो कुछ भजन साधन संपत्ति थी नरोत्तम दास को दे दी इसके बाद लोकनाथ गोस्वामी बहुत दिन तक नहीं जीवित रहे, अंतिम बेला सामने थी, परंतु इतने पर भी वे दृढ़ थे। उन्होंने जीवन भर जो दैन्य भाव धारण किया था उस पर जरा भी आंच नहीं आने दी। चैतन्य चरितामृत लेखन के पूर्व एक बार कृष्णदास कविराज आज्ञा लेने के लिए श्री लोकनाथ के श्री चरणों में उपस्थित हुए। कृष्णदास कविराज की उम्र भी उस समय 90 साल की थी। 90 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत लिखना था बहुत मुश्किल कार्य है। आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, और हाथ भी कांपता है, दिमाग भी काम नहीं करता। तो कृष्णदास कविराज इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए कि चैतन्य चरितामृत लिखने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इन्होंने आज्ञा दी, लेकिन एक शर्त रखी। ये शर्त क्या थी कि मेरा नाम इस ग्रंथ में नहीं आना चाहिए। इन्होंने आज्ञा दी उनको कि मेरा नाम इस ग्रंथ में नहीं आना चाहिए। देखिए ये विनम्रता है, जबकि चैतन्य महाप्रभु के सबसे पहले अनुयायी हैं जो वृंदावन में आए, है ना। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का भी तिरुभाव हो गया, तो फिर विरह दशा में ये बहुत ज़्यादा आ गए विरह दशा में। फिर 1588 ईस्वी में श्रावण कृष्णाष्टमी को ब्रज के खदीर वन में इन्होंने राधा विनोद का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा। आज के दिन आज श्रावण कृष्णाष्टमी है श्रावण कृष्णाष्टमी की तिथि है, तो आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती के जो अर्च विग्रह गोकुलानंद हैं, वहीं पर लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद विग्रह और चैतन्य देव के दिए हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के जो गिरिराज हैं, गिरिशिला आज भी पूजित हो रही है, और यहीं पर ही लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी की समाधि भी उसी स्थान में है ना। तो ये लोकनाथ गोस्वामी के बारे में हमें कुछ बातें पढ़ के सुनाई हैं। अब कुछ अन्यत्र भी इनके विषय में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। बंगाल के जैसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा मामूली गांव है। बंगाल में जिला कौन सा है? जैसोर, और गांव है तालखड़ी। तालखड़ी इस गांव में पद्मनाभ चक्रवर्ती नाम के ब्राह्मण रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सीता देवी। तो इनके एकमात्र पुत्र थे लोकनाथ, एकमात्र पुत्र थे। घर में वैष्णवों की उपासना चली आ रही थी परंपरा से, इनकी कुल परंपरा ही थी वैष्णवों की उपासना। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती अद्वैताचार्य के शिष्य थे, इनके पिता अद्वैताचार्य के शिष्य थे, और सदा उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। इन सब कारणों से लोकनाथ को बड़ा दिव्य संस्कार प्राप्त हुआ। छोटा सा बालक अपने पिता को जब देखता है कि क्या कर रहे हैं, अद्वैताचार्य की सेवा में लगे हैं, तो ये बालक को जो है बहुत शक्तिशाली संस्कार प्राप्त हुआ। बालकपन में ही ये जो है संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए, और हृदय बहुत भक्ति परायण था। श्री कृष्ण का नाम प्राणों से भी प्यारा, कहीं किसी से गोविंद वासुदेव माधव नारायण हरि सुनते थे तो दशा बदल जाती थी। किसी के मुख से सुने भगवान का नाम, कोई भी गोविंद माधव नारायण हरि, तो दशा बिल्कुल अलग हो जाती थी। संसार की कोई भी चर्चा लोकनाथ को जहर जैसी लगती थी। दूसरी बात है, जहर जैसी लगती थी। श्री चैतन्य देव का नाम बंगाल के कोने कोने में फैल रहा था उस समय। और लोकनाथ के कानों में भी जो है ये बात तूफान की तरह आई, तो दर्शनों के लिए तड़पने लगे, क्या मुझे श्री चैतन्य के दर्शन कब होंगे, कैसे होंगे, तड़पने लगे। रात दिन एकांत में रोते थे, किस लिए, कि श्री चैतन्य के दर्शन कब होंगे मुझे। बहुत उदास रहते, मन किसी वस्तु में लगता नहीं था। माँ बाप को भय था कि महाप्रभु के संग में पड़ जाने पर ये लड़का हमारे यहाँ से निकल जाएगा। हालांकि भक्त थे माता पिता भी, लेकिन फिर भी मोह है, अगर महाप्रभु के साथ गया तो फिर क्या होगा, फिर हाथ से निकल जाए। और एक एकमात्र संतान है, माता पिता की एकमात्र संतान, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि घर में रहे, लेकिन लोकनाथ नहीं रुके और एक दिन रात्रि में चुपचाप भाग गए। रात भर चलते रहे, रात भर चलते रहे, कहाँ से, ये था गांव, क्या नाम था गांव का, तालखड़ी, तालखड़ी गांव से नवदीप। रात भर चलते रहे, दूसरे दिन संध्या समय नवदीप में पहुंचे। रात भर चले और दूसरे दिन दिन भर चले और संध्या के समय नवदीप में पहुंचे, है ना, सोचिए। तो नवदीप में पहुंचने पर पता चला कि महाप्रभु एक घर में कीर्तन करने गए हैं, किसी घर में कीर्तन करने गए हैं। देखा कि महाप्रभु एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं और श्रीवास आदि भक्त उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। लोकनाथ की वाणी मूक थी, कुछ बोले नहीं, दृष्टि गड़ी सो गड़ गई, श्री चैतन्य को देखा तो देखते रह गए, बोलते कुछ नहीं है, लगातार देखे जा रहे हैं श्री चैतन्य को, एक तक महाप्रभु की ओर देखते ही रहे। आंगन में मूर्ति की तरह खड़े सुकुमार बालक पर महाप्रभु की दृष्टि पड़ी, दौड़े महाप्रभु, दौड़े दोहें बाहें फैलाए, लोकनाथ को अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, देखो रात को घर से भागे थे और चलते रहे रात भर और दिन भर भी चलते रहे और पहुंचे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने हृदय से लगा लिया और ये प्रभु के वक्षस्थल पर मूर्छित हो गए। अभी तक बात नहीं हुई, मूर्छित हो गए। लोकनाथ को कुछ पता नहीं, लोकनाथ अब पहले के लोकनाथ नहीं रहे, रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी, अंग अंग हरि हरि पुकार रहा था, प्राण प्राण से प्रभु की प्रीति झलक रही थी, महाप्रभु उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान हुए। लगातार 5 दिनों तक पागलपन में रहे, 5 दिनों तक तो पागल ही पागलपन में रहे, पागलपन में मतलब कुछ बोलते नहीं, खाते नहीं, बात नहीं करते, ऐसे। छठे दिन महाप्रभु ने लोकनाथ को वृंदावन जाने का आदेश दिया। वृंदावन जाने का आदेश दिया और कहा, भाई वृक्षों के नीचे जहां स्थान पाओ वहीं पड़े रहो, वृंदावन में जाओ, क्या करो, वृक्षों के नीचे जहां कहीं स्थान पाओ वहीं पड़े रहो, आस पास से मधुकरी मांग लाओ और ओढ़ने के लिए चिथड़ों की गुदड़ी बना लो, फेंके हुए चिथड़े उनकी गुदड़ी बना लो, यमुना जी का जल भरपेट पियो और सम्मान को जहर समझो और अपमान को अमृत समझो, श्री राधा माधव का भजन करो, किंतु मित्र वृंदावन को मत छोड़ना, ये महाप्रभु की आज्ञा। महाप्रभु की आज्ञा को ये टाल नहीं सके। अब महाप्रभु से प्रेम करते हैं और महाप्रभु आदेश दे रहे हैं कि वृंदावन जाएं, तो कैसे टालें। महाप्रभु का आदेश लेकर चीर घाट पर कदंब तमाल और बकुल की कुंजों के नीचे बैठकर रोते रोते उनसे विदा हुए, मतलब प्रेम साधन में लगे रहो, ये उनका आदेश था कि चीर घाट पर कदम तमाल बकुल के सघन कुंजों के नीचे बैठकर प्रेम साधन में लगे रहो। तो वे रोते रोते उनसे विदा हुए। इनके साथ गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ भी तैयार हो गए, क्योंकि ये जाएंगे कैसे जाएंगे, इनको रास्ता भी पता नहीं और ये रास्ता पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि तो प्रेम में पागल हैं। तो भूगर्भ गोस्वामी हिंदी भाषा भी जानते थे, तो भूगर्भ गोस्वामी को इन्होंने गदाधर पंडित ने भेज दिया अपने शिष्य को इनके साथ। वृंदावन की दशा उन दिनों विचित्र थी, घने जंगलों में और खंडहर थे। मंदिर क्या थे? खंडहर। मुसलमानों ने सब ध्वस्त कर दिए थे मंदिर, और कुछ नहीं था वृंदावन में, कुछ नहीं था, घने जंगल और खंडहर वृंदावन। वृंदावन के निवासी भी उस भूमि के महत्व को भूल गए थे। उन्हें वहां न तो चीर घाट मिला, न बंसीवट मिला, न निधुवन मिला, न भांडीरवन मिला, श्याम कुंड राधा कुंड तो बहुत दूर है। क्या करें, कहाँ जाएं, पता लगाएं तो कैसे। अंत में निराश होकर श्री राधा रानी की शरण होकर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, राधा कृष्ण गोपी कृष्ण श्री कृष्ण प्यारे का कीर्तन करने लगे। सहसा एक दिन उन्हें चीर घाट का पता लग गया। तो ये लीला स्थलियां स्वयं प्रकट होती हैं, जो गोस्वामियों ने वृंदावन की लीला स्थलियों का पता लगाया, वो कैसे पता लगाया? लीला स्थलियां स्वयं बोलती थी कि हम चीरघाट हैं, हम भांडीरवन हैं, हम भद्रवन हैं, हम खतिरवन हैं, हैं देखो हम यहाँ पर हैं, देखो हम यहाँ हैं। आधुनिक विधि तो यदि भी खुदाई करो उसमें से कुछ निकलेंगे अवशेष, उससे अंदाजा लगाओ कि भाई ये स्थान कौन है। लेकिन जो वृंदावन के गोस्वामी हैं उन्होंने इस विधि का पालन नहीं किया, बल्कि उन्होंने समर्पण की विधि का पालन किया। समर्पण के द्वारा वृंदावन के जो लीला स्थल हैं वो स्वयं बोलते थे कि आओ देखो। तो ये यहाँ पर अत्यंत प्रेमावेश का जीवन बिताने लगे। लोगों में इनकी प्रसिद्धि हुई, लोगों ने इनके लिए कुटिया बनानी चाहिए, परंतु इनके लिए तो निश्चय किया गया था कि रहना किसी पेड़ के नीचे। चैतन्य भगवान ने आदेश दिया था कि किसी पेड़ के नीचे रहना। तो जो लोग इनके लिए कुटिया बनाना चाहते थे तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, किसी पेड़ के नीचे रहना श्री चैतन्य का आदेश था। और निदृष्ठा से जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भरकर यमुना जी का जल पीकर मस्त रहना, बिना मांगे। अगर कुछ मिल जाए उसी को खा लेना और यमुना जी का जल पेट भर के पीना और मस्त रहना। ये कुछ दिनों पश्चात लोकनाथ ने महाप्रभु के सन्यास की बात सुनी। महाप्रभु सन्यास ले लिया, साथ में ये भी सुना कि दक्षिण भारत में वे गए हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में गए हैं। तो बहुत उत्कंठावश इनसे मिलने दक्षिण भारत में पहुंचे। कहाँ? श्रीरंगम में। 4 महीने रुके थे भगवान श्रीरंगम में, वेंकट भट्ट के घर में। तो उन्होंने सुना तो ये पैदल गए, सोचिए पैदल वृंदावन से श्रीरंगम कितना किलोमीटर पैदल गए भगवान चेतन से मिलने के लिए, पैदल गए। उन दोनों मोबाइल भी नहीं था कि मोबाइल से बात करते कि आप कब तक रहेंगे और मैं आपसे आना, आपसे मिलना चाहता हूँ, मोबाइल तो था नहीं। तो जब ये पहुँचे बहुत उत्कंठा बस उनसे मिलने के लिए दक्षिण भारत पहुँचे, तो वहाँ पता चला कि वे वृंदावन के ही चले गए लोग। ये वृंदावन से आए उनसे मिलने के लिए, वो भगवान वृंदावन की तरफ चले गए। कितना निराशा होगी, सोचिए, आप सोच सकते हैं कितनी निराशा। वृंदावन से श्री रंगम पैदल आए भगवान से मिलने के लिए, और भगवान जब ये पहुंचे तो भगवान वृंदावन की तरफ चले गए। तो अच्छा होता कि वृंदावन में ही रहते, वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, और भगवान ने कहा था कि वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाना, और वृंदावन छोड़ के गए तो पता चला कि भगवान वृंदावन गए। इसी आज्ञा भगवान की जो है पुष्ट हुई कि तुम अगर वृंदावन में ही रहते तो मेरा दर्शन हो जाता ना। अब ये वृंदावन पहुंचे तो पता चला कि वृंदावन से भगवान जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। कितना निराशा, श्री रंगम से वृंदावन आए तो भगवान वृंदावन से कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी की तरफ। इनका हृदय बैठ गया, लेकिन स्वप्न में महाप्रभु ने इनको समझाया कि तुम निराश मत हो, मैं अब रास्ते का भिखारी हूँ, तुम मुझे इस बीच में देखकर बहुत दुख पाते, इसीलिए मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। अभी मैं क्या हूँ, रास्ते का भिखारी हूँ। उस समय भी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तो चैतन्य महाप्रभु ने अकेले में इनको समझाया था कि मैं अभी जल्दी ही संन्यास लेने वाला हूँ। तो उसी समय चैतन्य के संन्यास की बात सुनकर के इनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। क्यों? कि संन्यास लेंगे तो इन ये अपना सिर मुड़ाएंगे, और इनके केस कितने सुंदर हैं, श्री चैतन्य के केस कितने सुंदर हैं, और ये केस नहीं रहेंगे, इस बात को सोच करके ही ये जो है लगातार आंसू बहा रहे हैं सोच करके। अब अगर देखेंगे तो कितना दुख होगा, जब सोचने में इतना दुख हुआ, इसलिए भगवान जो है इनको दर्शन नहीं दे रहे। तो अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीर घाट पर अपना डेरा जमा लिया और अंतकाल तक वहीं बने रहे। रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते और रात को बस एक दो घंटे सो लेते, न कभी किसी से मिलते न बात करते। लोकनाथ ने अपने शेष जीवन के दिन वृंदावन में भगवान के भजन का आश्रय लेकर एक आदर्श प्रेमी और आदर्श विरही के रूप में व्यतीत किए। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ के प्रणयन के पूर्व लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। श्री लोकनाथ ने उनके लिए हर्षपूर्वक हाँ भरी, क्या आशीर्वाद देने के लिए हाँ भरी कि हाँ मैं आशीर्वाद देता हूँ। किसी वैष्णव का आशीर्वाद मिल जाए तो कार्य की सफलता निश्चित है। कृष्णदास कविराज जिनके पास आए थे, कृष्णदास कविराज वृंदावन के जितने वैष्णव हैं उन सबसे आशीर्वाद ले रहे थे, तो उनके पास भी आए, तो इन्होंने आशीर्वाद के लिए हाँक भरी, लेकिन एक शर्त रखी, वो ये कि इस ग्रंथ में उनकी कहीं भी ना तो चर्चा आए ना उनसे महाप्रभु के संबंध की बात ही लिखी जाए। क्यों? क्योंकि सोचते थे कि मैं योग्य नहीं हूँ। इनकी जो है जो विनम्रता थी वो इतनी तीव्र विनम्रता थी कि वे सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ अगर मेरा नाम आया तो ये बड़ा अपराध हो जाएगा। बड़ा अपराध हो जाएगा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु के ये संगी हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रखते थे इनको, लेकिन ये क्या सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे अपने साथ रखा, लेकिन तो भी मैं चैतन्य महाप्रभु के धूल भी नहीं बन सकता। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, किसी सिंहासन में मानो राजा बैठता है और एक तिलचट्टा काक्रोच वो भी सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे कि भाई उसी सिंहासन में राजा बैठा है और एक कॉकरोच बैठा है, तो दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं। कॉकरोच है वो तो खून चूसता है और राजा शासन करता है। उसी प्रकार से भगवान के संगी जो जीव होते हैं तो उनका भगवान के साथ अंतर बना रहता है। जो भक्त हैं वो इस बात को कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, वे सोचते हैं कि हम भगवान के बराबर बन गए, तो ये भक्त नहीं होते कभी। वे सोचते कि हमको भगवान के बराबर बनना है या हमको ही भगवान बनना है, तो वे भक्त कभी नहीं बन सकते। लेकिन जो भक्त होते हैं वे भगवान के बराबर भी बन जाएं, भगवान उनको बराबर बना लें, तो भी वे अपने को बराबर नहीं समझते हैं। वो क्या सोचते हैं कि जैसे राजा उसी सिंहासन पर बैठा है और तो और कॉकरोच भी उसी सिंहासन पर बैठा है, कितना अंतर है, कोई तुलना ही नहीं। तो मैं भगवान के साथ भी अगर रहा और भगवान ने मुझे अपने समान आदर भी दिया, लेकिन तो भी मैं बहुत नीच हूँ हैं। तो उन्होंने जो है अपना नाम लिखने के लिए मना कर दिया कि मेरा नाम नहीं लिखना चैतन्य चरितमृत में, कि चैतन्य चरित्र तो बहुत दिव्य है और मेरा नाम अगर आ जाएगा तो ये बड़ी दूषित बात है। वो ये सोचते हैं, जैसे कि मान लो राजा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं, भाई सिंहासन पर राजा बैठे हैं, शासन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ एक कॉकरोच की भी आप चर्चा करें कि कॉकरोच भी सिंहासन पर बैठा है, तो इसका कुछ महत्व है? महत्व घट जाएगा, राजा का महत्व घट जाएगा अगर कॉकरोच की चर्चा करेंगे कि सिंहासन पर एक कॉकरोच भी बैठा हुआ था, महत्व घट जाएगा। तो उन्होंने क्या विचार किया, ये उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं आप लोग, आप लोग उल्टी परिक्रमा करते हो, सीधी परिक्रमा करना चाहिए, उल्टी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे ध्यान रखना चाहिए, प्रदक्षिणा, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं, है? कि भगवान गुरु के या भगवान को जो है अपने दाईं तरफ रखना है ना। तो मैं क्या बता रहा था, दूषित, तो उन्होंने क्या मतलब, क्या उनका भाव था कि चैतन्य चरितमृत में दूषित हो जाएगा अगर मेरा नाम उसमें आएगा, कहाँ श्री चैतन्य देव और कहाँ मैं, कहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ एक काक्रोच। ये भाव, दैन्य भाव, ईश्वर से अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष है और दीनता प्रिय है। लेकिन साथ साथ ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरे वैष्णव हैं तो उन्होंने तो मना नहीं किया, जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, मेरे ख्याल से रूप गोस्वामी उस समय थे भी नहीं, रूप गोस्वामी शरीर छोड़ चुके थे, सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन जीव गोस्वामी थे, तो जो दूसरे गोस्वामी थे उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो उनका अलग भाव है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं उनके अंदर दीनता नहीं थी, आप ये नहीं कह सकते, सबके अलग अलग भाव हैं। इनके अंदर ये ऐसी विनम्रता की भावना है, इन्होंने अपने मतलब किसी को शिष्य भी नहीं बनाया, इन्होंने किसी को शिष्य भी नहीं बनाया है? लेकिन जीव गोस्वामी ये बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम चैतन्य चरितमृत में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर उनका नाम चैतन्य चरितामृत में आएगा तो से चैतन्य महाप्रभु की महिमा बढ़ेगी। तो वो कुछ भक्त जो है ऐसे भी सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ही शक्ति से उन्होंने ये कार्य किया है, इसलिए जो भी कार्य जीव गोस्वामी ने किया है अगर उसका वर्णन किया जाएगा चैतन्य चरितामृत में, या रूप गोस्वामी का वर्णन किया जाएगा चैतन्य चरितामृत में, तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा बढ़ेगी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए। ये भी भाव, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने जो है अगर मना किया कि मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं आना चाहिए तो दूसरे वैष्णव में ये भाव नहीं था तो उनमें कोई दोष होगा, नहीं, दोष नहीं समझना है, उनकी भावना दूसरी प्रकार की है। युधिष्ठिर महाराज की भावना दूसरे प्रकार की है, वो राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं, हैं? क्यों कर रहे हैं राष्ट्रीय यज्ञ? पूरे संसार को दिखाना चाहते हैं कि उनके पास कितना संपत्ति है, कितना ऐश्वर्य है, दिखाना चाहते हैं। लेकिन भावना क्या है? शुद्ध भावना है कि पूरी दुनिया देखे कि श्री कृष्ण को जो समर्पित है उसके पास कितनी शक्ति होती है, कितना ऐश्वर्य होता है, देखो, और तुम लोग भी समर्पण करो कृष्ण को। ये भाव उग्रसेन महाराज, उग्रसेन महाराज ने भी अश्वमेध यज्ञ किया है? तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण से बोले कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना है, तो कृष्ण बोले कि नहीं, आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ मत करिए, क्योंकि मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ, तो मोक्ष तो आपको मिल ही जाएगा, आपको मोक्ष पाने के लिए आप अपना जो है ऐश्वर्य दिखाने के लिए करिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि आपका कितना ऐश्वर्य है। क्यों? इससे भगवान का ही जो है गुण होगा कि जो भगवान के आश्रित होते हैं भक्त, उनका जो है कितना प्रभाव है पूरी दुनिया में, देखो पूरी दुनिया देखे कि कितना प्रभाव है। तो ये भाव ही है, तो दोनों प्रकार के भाव हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, उन्होंने नियम बनाया था कि किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने भी नियम बनाया था कि मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगा। अब देखो कितना विरोध हो गया दोनों में, दोनों में बड़ा विरोध हो गया। लोकनाथ गोस्वामी ने नियम बनाया कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, नरोत्तम दास ठाकुर ने नियम बनाया कि इनको ही मैं गुरु बनाऊंगा और किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, इनका ही मैं शिष्य बनूंगा और किसी का शिष्य नहीं बनूंगा। तो इस दृढ़ निश्चय के साथ नरोत्तम दास ठाकुर इनका जो है जहाँ पर ये मल त्याग करने के लिए जाते थे वहाँ पर मल साफ कर देते थे, और हाथ धोने के लिए मिट्टी रख देते थे, पानी रख देते थे। और लोकनाथ गोस्वामी को पता नहीं कि कौन कर रहा है ये सेवा, रोज ये हाल था, एक साल तक करते रहे, तब वो छिप करके देखने लगे कि कौन कर रहा है, मेरा मल साफ कर रहा है कोई, तो जब देखा छिप करके कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर, राजा का लड़का, एक राजा का पुत्र, सोचिए। तब जो है इनको विवश होकर के शिष्य बनाना पड़ा, तो एक ही शिष्य बनाया। और नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत से भजन लिखे हैं, उनमें से एक भजन जो है इनके लिए लिखा है, वो कौन सा है, श्री गुरु चरण पद्मा। तो ये भजन हम लोग रोज गाते हैं गुरु वंदना के नाम से, लेकिन लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर ने इनके लिए लिखा है, इसलिए उसमें जब लोकनाथ लोकेरा जीवना ये जब शब्द आते हैं तो लोकनाथ इनके लिए है, लोकनाथ गोस्वामी के लिए, लोकनाथ लोकेला जीवाना है कि सब लोगों के नाथ हैं, लोकनाथ गोस्वामी हैं, और लोकेला जीवाना संसार के जीवन है, संसार को जीवन देने वाले। लेकिन जब हम लोग गाते हैं इस भजन को तो लोकनाथ जो है किसी भी गुरु को लोकनाथ कहा जा सकता है कि लोक का मतलब जितने शिष्य हैं जो उनको समर्पित हैं वो सब लोक हैं, और नाथ अपने शिष्यों के नाथ हैं। लोकेला जीवना अपने शिष्यों को जीवन देने वाले। तो इसलिए कोई भी शिष्य अपने गुरु के लिए ये भजन गा सकता है, लोकनाथ लोकेला जीवना है ना। तो इनका जो है लोकनाथ गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस है, तो आज बहुत पवित्र दिन है, इनकी कृपा का द्वार खुला हुआ है। तो हम लोग जो है प्रार्थना करें कि ये अपनी कृपा का बिंदु दें ताकि हम भी कृष्ण को समर्पित हो सकें, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, हाँ ये भी भाव, इसमें भी जो है दोनों प्रकार के भाव होते हैं भक्तों के। श्री चैतन्य ने इनको आदेश दिया कि सम्मान को विष मानो और अपमान को अमृत मानो, ये कहा। लेकिन जब भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं तो दूसरे प्रकार का आदेश देते हैं, तस्मा तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्तो राज्यम समृद्धम, इसलिए तुम उठो और तुम यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो, है ना। तो दोनों प्रकार के भाव भक्तों में होते हैं। कुछ भक्त जो है सम्मान को विष समझते हैं और अपमान को अमृत समझते हैं, वो अलग भाव है। लेकिन कुछ भक्त जो है अपमान को विष समझते हैं और सम्मान को अमृत समझते हैं, वो अलग भाव है। क्योंकि वे भगवान के समर्पित हैं और भगवान को जो है सम्मान देने के लिए वे सम्मान लेते हैं। भगवान को सम्मान देने के लिए वे सम्मान लेते हैं, सम्मान चाहते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, वे भगवान का संदेश देते हैं। इसलिए कोई अगर उनका सम्मान करता है तो उस सम्मान को वे अपने पास नहीं रखते हैं, भगवान तक पहुंचा देते हैं। ये नहीं मानते कि उनका कोई गुण है, ये भगवान का गुण मानते हैं। जैसे प्रभुपाद अपना सम्मान कराते थे, प्रभुपाद अपना सम्मान कराते थे, तो लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि आप अपनी पूजा कराते हो, ये तो आपका बड़ा अहंकार है, आप अपनी पूजा कराते हो, क्योंकि प्रभुपाद के अलावा और कोई सिखाने वाला था ही नहीं। तो प्रभुपाद को खुद ही सिखाना पड़ा कि मेरी पूजा करो और कैसे पूजा करनी चाहिए, प्रभुपाद ने खुद सिखाया, और कोई बताने वाला था नहीं कि प्रभुपाद की पूजा कैसे करें, प्रभुपाद का सम्मान कैसे करें। तो जब किसी ने पूछा कि आप अपना सम्मान खुद कराते हो ना, ये कौन सा तरीका है, तो प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का सम्मान भगवान के समान करना चाहिए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद का भाव ये था कि लोग मेरे से भगवान का संदेश प्राप्त करते हैं, भगवान का संदेश है जो मेरे माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये मेरे माध्यम से ही भगवान का सम्मान कर सकते हैं, भगवान सम्मान भी इनका स्वीकार करेंगे मेरे माध्यम से। तो वे जो है उस सम्मान को अपना सम्मान नहीं मानते थे, भगवान का सम्मान मानते थे। जैसे पूजा, इंद्र की पूजा होती थी, कई सौ सालों से ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, तो इस साल भी इंद्र की पूजा हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। ये भगवान क्या देख रहे हैं कि इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज की पूजा कराई, क्योंकि इंद्र जो है उस पूजा को अपने पास रख रहा था तो भगवान तक नहीं पहुंचा रहा था। जैसे कोई राजा का जो है सेवक है वो टैक्स वसूल करता है तो राजा को ना दे करके खुद अपनी जेब में रख रहा है तो वो राजा का अपराधी है। लेकिन ब्रजवासियों का इसमें कोई दोष नहीं था, वे इंद्र की पूजा करते थे तो इंद्र से कुछ भौतिक कामना नहीं चाहते थे, वो तो कर्तव्य भावना है उस भावना से करते थे, तो ब्रजवासियों की जो पूजा है उसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन भगवान ने क्या देखा कि इंद्र जो है दोषी है कि ये पूजा ब्रजवासियों के लेकर के और मुझे ना दे करके अपने अपने पास रखता है। तो फिर भगवान ने गिरिराज की पूजा कराई और गिरिराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो गिरिराज की पूजा होने से भगवान को पूजा मिली। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वे पूजा को भगवान तक पहुंचाते हैं। उनकी पूजा होती है तो वे उसको अपना गुण नहीं मानते कि मेरी पूजा हो रही है, क्योंकि भगवान के कारण ही उनके अंदर ये गुण आया है कि उनकी पूजा हो रही है, तो वे भगवान को ही पूजा पहुंचाते हैं पारदर्शी माध्यम, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? आप राधा विनोद कहाँ मिले थे कौन बताएगा? किशोरी कुंड में छाता उमराव, छाता में उमराव एक स्थान है, वहाँ किशोरी कुंड है, वहाँ पर इनको भगवान ने सपना दिया था कि मैं इस किशोरी कुंड में पड़ा हुआ हूँ और कई सौ सालों से भूखा हूँ, मुझे निकालो और मुझे भोग लगाओ। हो सकता है वो किशोरी कुंड हो अलग हो, लेकिन यहाँ बताया गया है कि छाता में उमराव नामक एक स्थान है और वहाँ पर किशोरी कुंड में राधा विनोद मिले। तो मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा, लोकनाथ गोस्वामी ने किसी रसोईये को लगाया था राधा विनोद के लिए भोग बनाने के लिए, अच्छा भोग बनाता था, स्वादिष्ट भोग बनाता था, तो रसोईया जो है आज नहीं आया, क्यों नहीं आया था? बीमार हो गया, नहीं आया, नहीं कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, तो कौन भोग बना रहा था राधा विनोद के लिए? लोकनाथ गोस्वामी स्वयं बनाते थे, क्योंकि अगर रसोईया नहीं बनाएगा तो और कोई उतना अभ्यास नहीं किसी का राधा विनोद को स्वादिष्ट भोग बनाने के लिए, तो ये स्वयं बनाते थे। तो भोग भी बनाते थे और श्रृंगार भी करते थे। इनका नियम था कि श्रृंगार करने के बाद फिर भोग तैयार करें, लेकिन आज के दिन क्या हुआ, श्रृंगार किया लेकिन भोग नहीं बनाया, क्यों? हैं? हाँ, इन्होंने जब श्रृंगार किया तो भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि देखते रहे और भूल ही गए कि भोग बनाना है ना। और इनके जो शिष्य लोग थे या सहायक लोग थे वो सब जो सामान है वो लेकर तैयार करके बैठे थे कि महाराज आएंगे तो भोग तैयार करेंगे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, राधा विनोद ने देखा कि ये तो जो है मेरे दर्शन के लिए दर्शन में डूबे हुए हैं, अब मुझे खुद ही अपना भोग बनाना पड़ेगा। भगवान भूखे हैं और ये दर्शन में डूबे हैं। तो भगवान ने क्या किया, इनका रूप धारण करके रसोई में गए और सब बना रहे हैं। लेकिन फिर पता कैसे चला, पता कैसे चला कि ये जो रहस्य है इसका पता कैसे चला?
एक सेवक बार बार बाहर आया देखा मंदिर में तो
नहीं, उनमें से एक सेवक किसी कारण से मंदिर में गया, किसी कारण से मंदिर में गया, तब उसने देखा। क्या देखा? कि महाराज तो यहाँ दर्शन में बैठे हुए, तो बार बार आ रहा था जा रहा था, किस लिए? असली कौन है नकली कौन है? तो क्या पता चला असली असली महाराज कौन है और नकली महाराज कौन है, पता चला? हैं हैं बहुत देर हो गई उस शिष्य को, बार बार इधर आ रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है। फिर बाद में उसने इनको जो है मतलब होश में लाए कि आप जो है दर्शन कर रहे हैं तो भोग कौन तैयार कर रहा है? उसने कहा कि महाराज ये तो मैं बड़ा आश्चर्य देख रहा हूँ, आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और आप वहाँ पर भोग तैयार कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो जब इनको होश आया, ओहो तो बहुत देर हो गई और मैंने भोग बनाया नहीं है, तो दौड़े दौड़े गए भोग बनाने के लिए। तो क्या देखा? सब भोग तैयार है लेकिन रसोईया फरार है, भोग पूरा तैयार है और रसोईया फरार है ना। और जब भोग लगाया राधा विनोद को तो देखा राधा विनोद मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा करके संकेत कर रहे हैं कि तुम जो है मेरे दर्शन में आनंद ले रहे थे, तो तुम्हारे आनंद को आनंद में बाधा ना पहुंचाने के लिए मैंने स्वयं अपना भोग तैयार किया। भगवान की ये भावना रहती है, कोई अगर भगवान का दर्शन करके आनंद ले रहा है तो भगवान नहीं चाहते कि भक्त के आनंद में कोई बाधा पड़े। जैसे वन भोजन के समय जो कृष्ण के सखा थे जो भोजन कर रहे थे और उनको चिंता हुई कि हमारे बछड़े कहाँ चले गए, तो कृष्ण ने क्या कहा, अरे मित्रों तुम लोग खाना बंद मत करो, भोजन बंद मत करो, मैं अभी जाकर के बछड़े लाता हूँ। और ये दिखा करके तो उनके हाथ में जो है दही भात का ग्रास है और वो ले करके गए कि देखो मैं भी खा रहा हूँ और तुम भी खाओ। तो अपने हाथ में जो है लिए हुए है? मैं अभी लेके आता हूँ, तुम लोग खाना बंद मत करो। और इसी बीच में ब्रह्मा जी ने उनको भी चुरा लिया, बछड़ों को भी चुरा लिया और एक साल तक भगवान बछड़े भी बनकर और बालक बनकर के लीलाएं करते रहे। और एक साल के बाद जब बछड़े और बालक लौटाए ब्रह्मा जी ने और कृष्ण जो है बछड़े लेकर के आए और बालक वहाँ पर थे, तो बालक क्या बोले, मित्र तुम इतनी जल्दी आ गए, हमारे हाथ का जो ग्रास है हमने अभी मुंह में भी नहीं डाला और तुम इतनी जल्दी बछड़े लेकर के आ गए। उनको ऐसा लगा, एक साल के बाद उनको लगा कि हमारे हाथ में जो ग्रास था वो हमने अभी मुंह में भी नहीं डाला और तुम इतनी जल्दी बछड़े लेकर के आ गए। ठीक है, श्रील लोकनाथ गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।
ये लोकनाथ के साथ।